समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा के आज के संस्करण में आपका स्वागत है। आज के सफर में आपके साथ हूं मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। हाय तन्वी।
हेलो चारू, एंड वेरी हैप्पी संडे एंड आल्सो वेरी हैप्पी करवा चौथ।
बिल्कुल, आज करवा चौथ है तो ये मिलजुल उपवास आसान नहीं होता और पर उसे संभव बनाती है हम नारियां।
राइट, एब्सोल्युटली।
अब देखो तन्वी, एक नारी का संकल्प, उसकी जिद, उसके अंदर की शक्ति, ये वो शक्ति है जो अपने आप एक जब तप और इंद्रियों के वश से एक महिला को ये देखिए मृत्यु तक को पराजित करने की हिम्मत देती है। तो आज के इस खास दिन क्यों ना एक और व्रत लें, बस इतना सा प्रण कर लेते हैं कि जो भी हो सभी जीवन साथी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, बात छोटी सी है पर अमल करें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
दैट्स सो ट्रू। दिस इज अ वेरी स्पेशल फेस्टिवल करवा चौथ विच फॉल्स ऑन द फोर्थ डे आफ्टर द फुल मून एंड दिस इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन नॉर्दर्न इंडिया एंड देयर इज अ स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ दिस फेस्टिवल विच टेल्स अस अबाउट द बॉन्ड ऑफ फेमिनिन फ्रेंडशिप बिकॉज एवरी वुमन गेट्स टुगेदर एंड दे डू द रिचुअल्स एंड दिस Well, I would say that this particular festival is not just for women, but it's for the men as well. As a couple, you can celebrate it together. Why not, right?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी ना एक बात तो हम सभी को समझ लेनी चाहिए कि जीवन में अगर जीत चाहिए तो एक दूसरे का साथ निभाते चलिए।
एब्सोल्यूटली। टू ऑल द व्यूअर्स, यू आर ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM एंड लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi inaugurates multiple development projects from Varanasi. Projects include foundation stone laying and inauguration of 7 airport projects in 5 states worth over 6,100 crore rupees.
जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में उरी में नियंत्रण रेखा के निकट सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी।
Prabowo Subianto takes over as President of Indonesia.
उत्तरी गाजा के बेतलेहम में इजरायली हमले में 70 से अधिक लोग मारे गए।
इन स्पोर्ट्स, जोशुआ चेप्टेगई ऑफ युगांडा विंस मेंस टाइटल ऑफ दिल्ली हाफ मैराथन। एलएमएस आईएलयू ऑफ इथियोपिया क्लेम्स फर्स्ट प्लेस इन वुमेन्स कैटेगरी।
और बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ने भारत से पहला क्रिकेट टेस्ट 8 विकेट से जीता।
And now it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we will talk about International Air Traffic Controller Day and World Statistics Day. Today is the International Day of the Air Traffic Controller, ATC. First time this day was celebrated on 20th of October in 2012. And after that, it is celebrated on the same day, that is 20th of October, every year to salute the unsung heroes of the aviation industry who ensure people's air travel is safe and efficient. These officers juggle thousands of flights daily, coordinating everything from takeoff to landing. Their efforts keep the skies safe, making them vital for both public safety and the country's economy.
आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वायु यातायात प्रबंधन की संयुक्त महाप्रबंधक एके श्रीवास्तव ने बताया कि आईजीआई हवाई अड्डा दिल्ली दुनिया के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में से एक है और उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के पास 4 रनवे हैं और ये अपने कुशल यातायात नियंत्रण कर्मचारियों के कारण प्रतिदिन लगभग 1400 उड़ानों के सुचारू आगमन और प्रस्थान का प्रबंध करता है।
हमारे पास 4 रनवे हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में आईजीआई एयरपोर्ट टॉप 10 एयरपोर्ट्स के अंदर आता है। हम यहां से लगातार करीब करीब 1400 अराइवल्स और डिपार्चर्स पर डे बिना किसी डिले के हैंडल करते हैं।
Highlighting the importance and functioning of the ATC, Mr. Srivastav said that ATC Delhi has the world's most advanced air traffic control system, which ensures passengers' safest journey.
एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईजीआई एयरपोर्ट के एटीसी कॉम्प्लेक्स में दुनिया के सबसे मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड एंड एडवांस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को लगाया हुआ है। हमारे पास इस समय वर्ल्ड की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़िया ट्रेन्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। साल के 365 दिन हम आपको सुरक्षित सफर कराने की गारंटी देते हैं।
लेकिन एक बात है, देखो तन्वी, ये जो है दिन, ये उन पुरुषों और महिलाओं का भी एक तरीके से उत्सव वाली चीज है कि देखिए ये 24 घंटे सातों दिन हवाई यात्रा को परिवहन का सबसे सुरक्षित संभव तरीका बनाने में मदद करते हैं और ये वायु यातायात नियंत्रकों के काम और पेशे के बारे में अधिक जानने का भी एक दिन है जो पायलटों और उनके यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए सप्ताहांत और छुट्टियों सहित दिन रात काम करते हैं। देखिए उड़ानों के रद्द होने और देरी पर बोलते हुए श्री वास्तव जी ने कहा कि उड़ान संचालन मौसम पर निर्भर करता है और एटीसी मुख्य रूप से सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने यात्रियों से आग्रह किया कि जब भी उन्हें उड़ान रद्द होने या देरी का सामना करना पड़े तो वे सहयोग करें और धैर्य बनाए रखें।
खराब वेदर की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से कुछ फ्लाइट्स डिले होती हैं, लेकिन सेफ्टी पैरामाउंट होती है। हम कभी भी सेफ्टी को साइड में नहीं रखते हैं। हमारी आपसे ये अनुरोध है एज पैसेंजर कि कभी अगर इस तरीके की चीज आपको फेस करनी पड़े तो काइंडली बी पेशेंट और कोऑपरेट करें, क्योंकि ये चीज आपकी सेफ्टी के लिए है। जनरली 99% टाइम ये सारा का सारा सिस्टम स्मूथली काम करता है।
Today we are also observing World Statistics Day. It is a global collaborative endeavor organized under the guidance of the United Nations Statistical Commission in every 5 years. Statistics are often referred to as the backbone of modern governance and economics. Accurate, timely and relevant data is essential for monitoring socio-economic progress, implementing evidence-based policies and achieving global development goals, including the United Nations Sustainable Development Goals. In today's fast-changing world, decisions need to be made based on reliable and up-to-date information. Statistics provide policymakers with crucial insights into societal trends, population demographics, and economic performance. This enables decision-makers to develop targeted policies that can improve the quality of life, particularly in vulnerable populations.
बिल्कुल, और देखो इस वर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस का जो विषय है वो डेटा के माध्यम से निर्णय लेने वालों को सशक्त बनाना है। ये डेटा साक्षरता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और सुनिश्चित करता है कि जो सरकारें, व्यवसाय और यहां तक कि व्यक्ति सूचित जो निर्णय है वो लेने के लिए आंकड़ों की प्रभावी ढंग से उसका उपयोग किया जा सके और उसमें व्याख्या की जा सके। और संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वैश्विक सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने में सांख्यिकी की भूमिका को लगातार बढ़ावा दिया है तन्वी। और देखिए 1947 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग विश्व स्तर पर डेटा संग्रह, प्रसंस्करण और प्रसार के लिए मानक निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
दैट्स राइट, एंड अ की एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे 2024 इज इट्स फोकस ऑन यूजिंग डेटा टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। These goals encompass a wide range of global challenges including poverty eradication, climate action and gender equality. Without proper statistical tracking, it becomes nearly impossible to assess whether global targets are being met or to make course corrections wherever necessary.
2024 का उत्सव डेटा संग्रह और विश्लेषण में नवीनतम नवाचारों पर भी प्रकाश डाला गया। और देखिए विशेष रूप से बड़े डेटा और एआई के युग में, आज युग बहुत एडवांस होता जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे वाले दिन है जिसमें चीजें ना पता चले। अब उन्नत प्रौद्योगिकी तेज और अधिक सटीक डेटा संग्रह विधियों को ये सक्षम कर रही है, जबकि एआई कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए विशाल डेटा सेट का विश्लेषण करने में ये बढ़ती भूमिका निभा रही है।
As we look into the future, the role of statistics will only grow in importance. With the world facing unprecedented challenges such as climate change, pandemics, and even economic inequality, there's a greater need for data-driven solutions. Investments in statistical capacity building, particularly in developing countries, will be crucial in ensuring that no one is left behind in the march towards a more equitable and sustainable world. And now we have a report on National Conference on Agriculture. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan has said that the government will establish a committee to address the stark disparity between farm gate prices and retail costs of horticulture produce. Addressing an agricultural conference in New Delhi, he said, while farmers sell vegetables at 5 rupees per kilo, consumers end up paying 50 rupees and this gulf needs to narrow. Mr. Chauhan also unveiled plans to launch Krishi Chaupal next month, an initiative aimed at bridging the lab-to-land gap in agricultural research. He emphasized upon the need to optimize the functioning of over 730 Krishi Vigyan Kendras across India, highlighting concerns about their fragmented management under various authorities including ICAR, universities and state governments. The minister called upon states to develop model farms spanning 2 to 2.5 acres to demonstrate best practices in agriculture. Mr. Chauhan said, agriculture is India's economic backbone and no progress is possible without strengthening this sector.
और अब समय हो गया है अपने संवाददाताओं के माध्यम से देश के अलग अलग भागों में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराने का. तो तन्वी, सबसे पहले कहां ले चल रही हैं आप?
And now we are going to take you to Amravati Drone Summit 2024, which is set to take place in Amravati on 22nd and 23rd of this month, bringing together experts and innovators from across the nation. This grand event organized by the Andhra Pradesh government will showcase cutting-edge drone technology, exhibitions and live demonstrations. Our correspondent has more details on the highlights and preparations for this summit. A report on this.
The capital city of Andhra Pradesh, Amravati, is gearing up for a groundbreaking event, the Amravati Drone Summit 2024, set to take place on the 22nd and 23rd of this month. This large-scale drone summit is being organized by the Andhra Pradesh government in collaboration with Ministry of Civil Aviation, the Drone Federation of India and the Confederation of Indian Industry. Under the guidance of Chief Minister Narendra Chandrababu Naidu, elaborate arrangements are being made to ensure the success of this event. The summit will bring together 400 speakers, representatives from both central and state governments, and over 1,000 participants, including students, professionals, and tech enthusiasts. The summit aims to highlight the use of drones in various sectors like agriculture, health, logistics, environmental monitoring, and disaster management. The event will feature 9 sessions on drone manufacturing and innovation, along with 4 key presentations focusing on building a drone ecosystem in India. A special session will explore the potential of Amravati becoming the drone capital of India. Further, 40 exhibition halls will showcase cutting-edge drone technology from manufacturers across the country, while a spectacular drone demonstration is set to dazzle the attendees. Panel discussions on critical topics such as drone regulations, public safety, disaster management, and the future of aerial experiences in tourism and entertainment will also be held. As part of the 2-day summit, an array of cultural programs will light up the evening on the 22nd at Bank Park in Vijayawada, including a laser show, fireworks, music performances, and a grand drone show with 5,000 drones. With participation from the Chief Minister, Union Civil Aviation Minister and a host of dignitaries from across the nation, the Amravati Drone Summit 2024 promises to be a landmark event, setting the stage for India's future as a global drone hub. Allu Murali for Parikrama from Vijayawada.
चलिए अब महाराष्ट्र चलते हैं.
राइट, इन महाराष्ट्र मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी द सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कमिटी यूजिंग द मिथिकल आपता लीड्स स्टोरी टू एनकरेज वोटर्स टू कास्ट देयर वोट्स इन द अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस. लेट अस हियर फ्रॉम आवर मुंबई कॉरेस्पॉन्डेंट अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव बाय द सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कमिटी.
In Maharashtra, people greet each other on Dasara with apta leaves, botanically known as Bohemia racemosa. As the legend goes, on the day of Dasara, Kubera, who is the god of wealth, converted millions of apta leaves into gold to help an honorable scholar named Kautsya to pay his Guru Dakshina. Kautsya accepted only the ones he needed and the rest were distributed among residents of Ayodhya. Underscoring the significance of this thoughtful tradition, the systematic voters' education and electoral participation, also known as Sweep Committee, in the Mankhur Shivaji Nagar Assembly constituency in Maharashtra, encouraged voters to cast their votes in the upcoming elections through messages on apta leaves. The message, "Your vote is invaluable," urged voters not to waste their votes. This initiative was launched by Mumbai Suburban District Collector and District Electoral Officer Rajendra Kshirsagar along with Deputy Collector Sudam Pardeshi and was effectively implemented by Sweep Committee Coordination Officer Manisha Pandit and others. On the eve of Dasra, apta leaves were distributed to citizens with messages such as, "You are special and so is your vote," encouraging residents to combat the urban apathy often observed in the recent elections in the area. The electoral process, regarded as the festival of democracy, is set to take place in Maharashtra on 28th November and counting is scheduled for 23rd November. Ankita Apte for Parikrama from Mumbai.
And now let's take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 25th October 1914, Bhupesh Gupta was born at Itna in the erstwhile Manmohan Singh district of Bengal province in British India. He studied at the Scottish Church College in the University of Calcutta. He joined the Bengal revolutionaries in his school days. He had been held in detention for 4 years and more.
Later, Bhupesh went to London and joined the clandestine group of Indian communists. He actively participated in the India League's propaganda work among the British public, pressing for India's demand for complete independence. Despite poor health, due to his years in prison, Bhupesh Gupta was singularly active, eluding the British police.
Bhupesh's circle, however, was not confined to communists. Young, old and many others were drawn to him. This way, it was not surprising that he was very friendly with Feroz Gandhi and Indira Nehru, friendships which survived many storms. All three of them returned home by the same boat during wartime.
Coming back, Bhupesh went straight into the Communist Party's Central Underground, where he worked under P.C. Joshi for some time. In 1941, he came out in the open and became active in Bengal. He was one of the pioneers in setting up the Friends of the Soviet Union along with Jyoti Basu. From the days in Britain, both were close to each other.
Close comradeship continued uninterrupted until 1964, when the communist movement was split, Bhupesh choosing to stay with the CPI while Jyoti joined the leadership of the CPM. By the time independence came, Bhupesh had emerged as a young but significant political personality in Bengal. There was the promise of many heights to conquer.
He was a member of the Rajya Sabha for 5 terms from West Bengal, from 3rd of April 1952 till his death. He was a skilled parliamentarian. Bhupesh came to eminence by his fearless courage to stand up against injustice or inequity or to uphold national dignity.
One can narrate 100 episodes bringing out Bhupesh's dauntless fight within the Rajya Sabha. He died in Moscow on the 6th of August, 1981.
Velikakate Sangaran Achyudanandan was born on 20th of October, 1923 to Sankaran and Akkamma in Purappura, Alappuzha, Travancore. Since he lost both parents at a very young age, he was forced to quit his studies after finishing the 7th standard. He participated in the freedom movement and the communist movement. Later, VS organized agricultural workers in Kuttanadu and agitated against the rulers.
At 16, he became a dedicated organizer of coir factory workers. He was noted for his simplicity, dedication and deep reading. V.S. was in the forefront of the Punapra Vayalar uprising against the policies of C.P. Ramaswamy Iyer, Diwan of Travancore, who wanted to establish an American model government in Travancore. He was arrested on the 28th of October 1946 and taken to Punjab police station.
He was beaten up severely in the lockup. V.S. spent 5.5 years in jail and 4 years underground during his political life. He has also been active in parliamentary politics. He was elected as a member of Kerala Legislative Assembly 7 times.
He became the 11th Chief Minister of Kerala in 2006 at the age of 82.
और तनवी अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
एब्सोल्युटली. द 19th एडिशन ऑफ द दिल्ली हाफ मैराथन वाज हेल्ड इन द नेशनल कैपिटल टुडे. ओलंपिक चैंपियन जोशुआ चेप्तेगई ऑफ युगांडा वन द मेंस टाइटल एंड इन द वुमेन्स कैटेगरी एलमेस आयायू ऑफ इथियोपिया अटेन्ड फर्स्ट पोजिशन. थाउजेंड ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द मैराथन विच बिगेन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पास थ्रू भीष्म पितामह मार्ग Lodhi Road, Mathura Road, C Hexagon, Kartavya Path, Rafi Marg and Sansad Marg and returned to finish outside the stadium complex. Talking to media, Indian Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi said that the atmosphere of the marathon was very energetic and a perfect example of the Fit India movement. The Railway Protection Force, RPF, also participated in the marathon to raise awareness about child trafficking prevention efforts across the railway network. Talking to media, RPF Director General Manoj Yadav said that today's run was dedicated to the 65,000 RPF Jawans that have rescued 50,000 children from child trafficking in the last 4 years.
अब देखिए बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ने भारत से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 8 विकेट से जीत लिया है. मैच के 5वें दिन न्यूजीलैंड ने जीत का लक्ष्य 27 ओवर और 4 गेंद में केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इससे पहले मैच के 4थे दिन कल भारत की टीम दूसरी पारी में 462 रन बनाकर आउट हो गई. भारत ने पहली पारी में 46 और न्यूजीलैंड ने 402 रन बनाए. और फिर अगला हम लें तो देखिए दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा. सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने पिछली बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया. 2016 के बाद पहली बार महिला T20 विश्व कप में कोई नया विजेता होगा. उधर न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर 14 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है.
And now it's time where we talk about the people who have left their imprints on this particular day and made 20th of October very special. Either they have taken birth on this day or they have died on this day or we are still celebrating their birthday.
Bilkul. Tani, aaj nidhan hua tha C.V. Shridhar ka. निर्देशक सीवी श्रीधर का निधन 2008 को हुआ था और ये एक निर्देशक होने के साथ साथ निर्माता और पटकथा लेखक भी थे. और जो इनका जन्म है वो 16 अगस्त 1933 को हुआ था. देखिए श्रीधर ने मामन मगल, माहेश्वरी और अमारा दीपम जैसी फिल्मों के लिए लिखा. उन्होंने दिले नादान, प्यार किए जा और नजराना जैसी फिल्मों का निर्देशन किया. उन्हें फिल्म नैनविल या आलियन के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति के रजत पदक से सम्मानित किया गया था. और सीवी श्रीधर के निर्देशन में बनी फिल्म दिल एक मंदिर में राजकुमार, मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार थे. और ये फिल्म 1963 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म का नेजल और अलायम नाम से तमिल रीमेक भी बना है. तो देखिए इंसान चला जाता है लेकिन उसकी जो कर्म है वो इतने जरूरी होते थे, इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो पीछे एक निशान छोड़ जाते हैं.
एब्सोल्युटली. एंड टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग मेनी सच पीपल. Apart from C.V. Shridhar, let me tell you about Anne Sullivan. Today is her death anniversary as well, and she was that American teacher, best known for being the instructor and lifelong companion of Helen Keller.
At the age of just 5, Anne Sullivan contracted trachoma, an eye disease which left her partially blind and without reading or writing skills. She received her education as a student of the Perkins School for the Blind, and soon after graduation, at the age of just 20, she became a teacher to Helen Keller. And we all know the story of Helen Keller, don't we?
Yeah.
So this was Anne Sullivan for all of you, and today we are also talking about Leela Seth.
Okay.
Today is her birth anniversary. She was an Indian judge who served as the first woman judge of the Delhi High Court and became the first woman to become Chief Justice of a State High Court, Himachal Pradesh High Court, on the 5th of August 1991. She was also the first woman to be designated as a senior counsel by the Supreme Court of India, and she sat on the number of inquiry commissions. Many of them were known cases. So we are here talking about many such people, and the next name in the list is
Dr. B.S. Guha. ये एक भौतिक मानव विज्ञानी थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीयों को नस्लों में वर्गीकृत किया था और उनका निधन 20 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन 1961 को हुआ था. वो भारतीय मानव विज्ञानी सर्वेक्षण के पहले निदेशक थे. हार्वर्ड से विशेष विषय में पीएचडी प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय थे. गुहा को भारत के लोगों को नस्ली समूहों में वर्गीकृत करने पर उनके काम के लिए जाना जाता है तन्वी, और आज कई विकासवादी वैज्ञानिकों ने नस्ल की अवधारणा को खारिज कर दिया है. इसलिए गुहा के सिद्धांत मुख्य रूप से ऐतिहासिक उद्देश्य के हैं. वो एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के अध्यक्ष और रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के फेलो रहे, और बिरजाशंकर गुहा जो है इन्होंने बंगाल सरकार के साथ शोध विद्या के रूप में काम किया. उन्होंने हार्वर्ड सहित कई महान संस्थानों में एक शोध विद्वान के रूप में बहुत ज्यादा मतलब काम किया, इसके बहुत फायदे मिले.
ओके, एंड बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी, लेट मी जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन. हैव यू सीन द मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर?
यस. अरे बहुत ही छुई थी.
एब्सोल्यूटली. दिस फेमस मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय नोबडी एल्स बट डैनी बॉयल, एंड टुडे इज हिज 68th बर्थडे. एन इंग्लिश डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वी आर टॉकिंग अबाउट. ही इज नोन फॉर हिज वर्क लाइक द बीच, 28 डेज लेटर, सनशाइन, 127 आवर्स, स्टीव जॉब्स, यस्टरडे, एंड ऑल्सो स्लमडॉग मिलियनेयर. सो लेट्स हियर दिस अमेजिंग सॉन्ग, जय हो, संग बाय A.R. Rahman from the movie Slumdog Millionaire.
उपन्यासकार गोवर्धन राम त्रिपाठी का जन्म आज ही के दिन 1855 को गुजरात में हुआ था. गोवर्धन त्रिपाठी गुजराती, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे. उनका विशाल उपन्यास सरस्वती चंद्र चार बड़े बड़े खंडों में प्रकाशित हुआ, और इसे आमतौर पर गुजराती का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है. पहला, दूसरा और तीसरा खंड लिखते समय भी वो वकालत कर रहे थे, और धार्मिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में वो बहुत ज्यादा भाषण दिया करते थे, और ऐसी ही उनकी कर्मठता उपन्यास का अंतिम खंड वकालत से अवकाश ग्रहण करने के बाद वो प्रकाशित हुआ था. और गोवर्धन राम त्रिपाठी के कुछ और भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, नवल राम में जीवन कथा, लीलावती जीवन कला और साक्षर जीवन. वो गुजराती साहित्य परिषद के पहले अध्यक्ष चुने गए. 4 वर्ष की उम्र में ही वो पढ़ने लगे, और गुजराती कवि दत्तपत राम की कविताओं से वो इतने प्रभावित हुए कि केवल 5 या 6 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखी, और वो भी एक चौपाई में. बहुत बड़ी बात है 5 साल का बच्चा और ऐसे लिखे. और देखिए, वो मानते थे कि साहित्यकार को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र रहना चाहिए, और इसलिए उन्होंने 3 महीने के, खैर अब तो हमें ये बात यहीं रोकनी होगी क्योंकि हमारा वक्त कह रहा है कि बस बहुत हुआ. तो फिर तन्वी, आज करवा चौथ का दिन है तो कहते हैं ना लास्ट में छन्नी देखकर फिर पूजा करते हैं लंबी उम्र के लिए कहते हैं, तो सैकड़ों साल की दीर्घायु की कामना के साथ साथ ये भी सोचिएगा कि अपने साथी को समझने के लिए रोज सैकड़ों जतन भी करने पड़े तो सर आंख हो लेंगे। तो बस आज की परिक्रमा बस यहीं तक, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना और मेरी सहयोगी तंबी को। नमस्कार।